رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی ایک باقاعدہ موضوع کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور ان کی تشریح و تفسیر کے ساتھ چند باتیں عرض گزار کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے علم سے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن پاک کا علم سیکھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، جو شخص جمعۃ المبارک کو میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں پارے میں سورہ مومنون، اس کی ابتدا میں چند آیات مبارکہ، وہ انشاءاللہ العزیز آج سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ آج ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے اور اس کامیابی کے پیچھے وہ اپنی تمام تر کوششوں اور محنت اور ہر طرح کی کاوشوں کو لگاتا ہے، جو اس سے ہو سکے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی محنتوں کو خرچ کرتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے اور تمام تر کوششوں کاوشوں کے ساتھ کامیابی کو حاصل کرنے کی طرف ایک دوڑ ہے اور ایک لگن ہے۔ آیا کہ مسلمان کو دنیا کے اندر بھیجا کیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، تخلیق اس کی گئی ہے، تو کیا صرف اس مسلمان کو دنیاوی کام کاج کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ کیا مسلمان کو دنیا کے ہی مال و متاع کمانے کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ اور کیا ظاہری طور پر مال و متاع کما لینا، یہ مال حاصل کر لینا، کیا مسلمان کی کامیابی یہی ہے، اس کا معیار یہی ہونا چاہیے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی تخلیق کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی ان کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق کی ہے، ان کو دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے، اپنے معاش کے معاملات، کمائی کرنا، روزگار کا سلسلہ اپنانا، روزمرہ کی زندگی، ضروریات اپنی پوری کرنا، اپنے بچوں کے معاملات کو چلانا، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اپنی آخرت کو، اللہ کو، اللہ کی یاد کو، ذکر کو، عبادتوں کو بالکل یکسر بھول جائے۔ یہ طریقہ کار، یہ انداز بالکل مناسب نہیں ہے اور ہرگز درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیاوی طور پر بہت زیادہ ترقی کر لے، بہت کما لے، بہت کچھ عروج پہ پہنچ جائے، تو ایسے شخص کو بھی کسی طور پر بھی کامیاب نہ تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اسے کامیاب کہا جا سکتا ہے۔ کامیاب وہی ہے جسے اللہ کامیاب فرمائے، کامیاب وہی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب فرمائے، کامیاب وہی ہے جسے شریعت مطہرہ کامیاب فرمائے۔ اور وہ مومن کون سے کامیاب ہیں؟ وہ مومن کون سے فلاح پانے والے ہیں؟ وہ مومن کون سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مومن ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی کو گزارنے والے مومن ہیں؟ وہ کون سے مومن ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، ان کا بیان فرمایا ہے۔ ابتدان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر یہ دعا مانگی۔ وہ دعا کون سی؟ دعا یہ مانگی، اے اللہ عز وجل، ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ کرنا۔ اے اللہ عز وجل، ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ کرنا، ہمیں عزت دینا اور ہمیں ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، یعنی ہمیں منتخب فرما لے، کسی اور کو منتخب، ہم پر کسی دوسرے کو منتخب نہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی، اور ان 10 آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان مومنین کی ان 10 صفات کو، ان 10 پیاری عادتوں کو بیان کیا کہ جن 10 عادتوں، جن پیاری صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو کامیاب فرمایا ہے، ان مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے وہ سنتے ہیں کہ کن مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، اپنی نماز میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور اس طرح حاضر ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، ڈرتے ہوئے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے ظاہری اعضاء کے ساتھ اور باطنی اعضاء، یعنی باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی ان کے اعضاء بھی ایسے حاضر ہیں، اور وہ باطنی طور پہ بھی اپنے تصورات، اپنے تخیلات، ان تمام تر اپنی سوچیں، اپنی فکریں، وہ تمام تر دنیاوی معاملات سے ہٹا کر وہ اللہ کی عبادت میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز کے ظاہری معاملات کا بھی خیال رکھتے ہیں، نماز کے فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنتیں ہوں، مستحبات ہوں، ان کا خیال رکھتے ہیں، نماز کے مکروہات ہیں ان سے بچتے ہیں، ناپسندیدہ باتیں ہیں ان سے بچتے ہیں، نماز کے اندر کس طرح اپنے دل کو مشغول کرنا ہے ان پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ ظاہراً اور باطناً ہر اعتبار سے اللہ کے حضور ایسے حاضری دیتے ہیں کہ رب کعبہ ان مومنوں کی تعریف فرما رہا ہے اور ان مومنوں کی کامیابی کا اعلان خود اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ان کا اعلان فرما رہا ہے کہ وہ مومن وہ کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بشارت دی گئی وہ فرمایا پہلی بات مومن کے لیے ذکر کی گئی کہ مومن وہ کامیاب ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں، پہلی شرط ہی ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کسی کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ جتنا بھی بڑا کوئی بظاہر نیکیاں کرنے والا ہو، بظاہر کتنی بھی عبادت کرنے والا ہو، عبادت گزار ہو۔ عبادت گزار سے مراد دنیاوی طور پر جنہیں عبادت سمجھا جاتا ہے، یا واقعی عبادت کرتا ہو لیکن ایسا کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو ایمان پہلی شرط ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی پڑھیں، جہاں جنت کی جزائیں ہیں، جنت انعام ہے، جہاں جتنے بھی انعامات کا ذکر ہے تو بیان کس کو کیا گیا ہے؟ ان تمام تر چیزوں کے لیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل کیے جنہوں نے، ایمان پہلے، کہیں فرمایا وہ مومن جس نے عمل کیے نیک لیکن مومن ہو، تو ایمان کی شرط یہ پہلی شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر چاہے کسی کے ساتھ بظاہر نیکی والے معاملات ہو، بظاہر کسی کے ساتھ مدد والے معاملات ہو، کسی کا علاج معالجہ ہو، کسی کی مالی امداد ہو، کسی کے ساتھ حسن سلوک ہو، کسی کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ ہو، کسی کی مشکل کو آسان بنا دیا ہو، لیکن ایمان نہیں تو یہ نیکیوں کی ان کی جزا اللہ کے حضور اس کو کچھ نہیں ملے گی۔ پہلی شرط آدمی کا ایمان ہونا، یہ ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت کرنا بھی آدمی پر بہت ضروری ہے، کہ بسا اوقات ایمان ضائع ہو جاتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ نیکی والے اعمال تو بڑے کیے جاتے ہیں لیکن ایمان کو محفوظ نہیں کیا جاتا، ایمان کی حفاظت نہیں کی جاتی، ایمان ضائع ہو گیا، نیکیاں جتنی بھی کرتے رہے تو اس نیکی کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ہوگا جب ایمان ہی نہیں ہے۔ تو ایمان شرط اول ہے، اور وہ ایمان اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ، جیسے ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور دین متین کی ضروریات دین پر، ان تمام پر جو ہے وہ ایمان، یہ ایک مسلمان کے لیے جو ضروری اور اہم چیزیں ہیں، ان تمام پر اس کا اعتقاد اور ایمان ہونا، یہ اس کی ایمانیات کے احکام اور مسائل ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ آدمی کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ تو ایمان کے بعد یہ فرمایا کہ وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع خضوع کرتے ہیں، نماز کی ظاہری اور باطنی، ظاہری طور پر اعضاء کے ساتھ بھی، نماز میں ہمیں حکم ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کے اندر نظر کہاں رکھیں، آنکھ کے کنارے سے کسی طرف ہم نہ دیکھیں، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں، کوئی عبث اور بیکار کام ہم نہ کریں، کوئی دوسرے کام کے اندر جو ہے وہ ہم مشغول نہ ہو جائیں، نماز کے اندر ہم اپنی انگلیوں کو یہ چٹکھانے والے کام میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے کوئی اور معاملات کے اندر، کئی ایسے نماز کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، امام کے پیچھے کھڑے، نماز تکبیر اللہ اکبر، لیکن وہ داڑھی کو تھوڑی دیر سر کے اوپر خارج کر لیں گے، پھر اگر ٹوپی ہے تو اس کو صحیح کر لیں گے، تھوڑی دیر بعد پھر ان کو کوئی دل میں ایسی کھجلی سی ہوتی ہے کہ بھائی کہیں خارج ہو رہی ہے، خارج کر لو بھائی، پھر حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ نماز کے اندر ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی احکام سیکھنے چاہیے کہ ہمارا ہاتھ اگر اٹھ جائے تو کب ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ غور کیے بغیر ہی وہ جتنی بار وہ ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں اور یہ معاملات کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ضرورتاً اگر वाकई आदमी के लिए परेशानी हो रही है उसको, तो एक रुकन में उसको दो बार इजाजत है, यानी क्याम में खड़ा है, तो अब इसको अगर हाजत है, इसको जरूरत है, तो इसने हाथ उठाया और इसने खारिज कर ली गई, फिर हाथ बांध लिया, बिला जरूरत नहीं करना चाहिए, फिर जरूरत पड़ी तो फिर ये उठा के इसने कहीं कर लिया, अब बांध लिया, अब तीसरी बार ना करे, करेगा तो इसकी नमाज टूट जाएगी। तो इन चीजों का ख्याल रखना ये बहुत जरूरी है। लेकिन बस ऐसे ही रहना और बालों को छेड़ते रहना, पानी के कतरे हैं तो उनको साफ करते रहना, और इस तरह, ये जाहिरी तौर पे हम नमाज की तरफ नहीं है, तो जब जाहिरी हम इन चीजों में मशगूल हैं तो कल्बी तौर पर तो तसव्वुर ही नहीं कि नमाज की तरफ आदमी आए। तो खुशू खुजू की अलामत ही यही है, जाहिरन भी हम हो और बातिनन भी हम नमाज की तरफ ऐसे मशगूल हो जाए। जब जाहिर और बातिन के साथ हम नमाज की तरफ मशगूल होंगे तो फिर देखें इस नमाज का शौक क्या है, फिर देखें कि ये नमाज हमें, यही नमाज किन किन गुनाहों से बचाती है, ये नमाज हमें नेकियों की तरफ कैसे रागिब करती है, ये नमाज हमें कैसे कैसे फवायद इसी नमाज से हमें हासिल होंगे, फिर देखें कि इस नमाज के कितने इनामात हमारे ऊपर आते हैं। तो इन चीजों के साथ अपनी नमाज को पढ़ने की कोशिशें करनी चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, फरमाया कि उन लोगों का क्या हाल है जो अपनी नमाज में नजरें आसमान की तरफ उठाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जो गए वो सख्ती की और इरशाद फरमाया, ये लोग इससे बाज आ जाएं वरना इनकी नजरें छीन ली जाएंगी, ये लोग इससे बाज आ जाएं वरना इनकी नजरें छीन ली जाएंगी। अल्लाहु अकबर, यानी नमाज के अंदर आसमान की तरफ नजरें उठाना, इससे खतरा है कि आदमी की नजरें ही चली जाए, उसकी नजरें, उसकी आंख की नेमत ही उससे छीन ली जाए। इसलिए नमाज के अंदर तमाम तर कोशिशों के साथ, नमाज को तवज्जो के साथ, इधर उधर भी नहीं देखना चाहिए, नमाज की हालत में क्याम में है सजदे की हालत को हम देखें, जो नमाज के मुस्तहबात हैं रुकू की हालत में हम कदमों की तरफ नजर करें। तो जब इस तरह हमारी ये जाहिरी हालत होगी तो इंशाल्लाह कल्बी तौर पे भी तसव्वुर इंशाल्लाह बनता रहेगा। ये असल में शैतान है जो आदमी को अव्वल रोकता है कि नमाज ना पढ़े, लेकिन जब वो इंसान उसको झटक देता है, नमाज की तरफ आ जाता है, तो फिर शैतान की कोशिश होती है कि अब किसी तरह इस आदमी को नमाज में ही इधर उधर मशगूल रखा जाए और इसको नमाज सही तरीके से ना पढ़ने दी जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में इधर उधर तवज्जो करने वाले के बारे में सवाल किया तो आपने फरमाया ये शैतानी लग्जिश है, इसके जरिए शैतान बंदे को नमाज में फुसलाना चाहता है, यानी वो अपनी नमाज के अंदर उसकी तवज्जो को इधर उधर करना चाहता है। तो इसलिए जिस तरह भी हो सके अपनी नमाज को अल्लाह के हुजूर ऐसी हाजिरी के साथ बनानी चाहिए ताकि वो नमाज का एक आदमी को लुत्फ भी आए। अंताबुद अल्लाह का अन्ना का तरा, ऐसे अल्लाह की इबादत करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फाइलम तकुन तरा फैनहु यराक, और अगर ये नहीं है मामला फैनहु यराक, ये तो तसव्वुर बांधो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इस यकीन और इस एतिकाद के साथ अल्लाह मुझे देख रहा है। जब हम पांच वक्त की नमाज इस अंदाज से पढ़े, हम घर में हो तन्हा भी पढ़ रहे हैं, हम नवाफिल पढ़ रहे हैं, हम घर में सुन्नतें पढ़ रहे हैं, इस अंदाज से पढ़ रहे हैं, अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर ये एक तसव्वुर बन जाएगा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। तो फिर हम जब तन्हाई में भी जाएंगे तो अगर कोई नाफरमानी वाले कामों में मशगूल होंगे तो एकदम ये तसव्वुर आएगा अल्लाह देख रहा है, तो ये कई गुनाहों से हम बचने में कामयाब हो जाएंगे। जब नमाज ऐसी होगी तो फिर नमाज वो गुनाहों से हमें बचाने वाली भी नमाज होगी। हमारे बुजुर्ग ने दिन की इस तरीके से नमाजों के बड़े बेशुमार वाकियात हैं। हजरत सैयदना हातिम असम रहमतुल्लाह ताला ले अल्लाहु अकबर, इतने ये बुजुर्ग थे कि इनसे इनकी नमाज के बारे में किसी ने पूछा कि हुजूर आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, आपकी नमाज का आलम क्या है, तो ये फरमाने लगे कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो अच्छी तरह वुजू करता हूँ, जब वुजू अच्छी तरह कर लूं तो फिर आकर बैठ जाता हूं, अपने आजा को भी हाजिर कर लेता हूं और तवज्जो भी तमाम तर हाजिर कर लेता हूं, और फिर इस कैफियत के साथ मैं तमाम तर तवज्जो के साथ और जाहिरी आजा के साथ ऐसा हाजिर हो जाता हूं, और नमाज जब पढ़ने लगता हूं तो मेरा ये तसव्वुर ये बनता है कि खाने काबा मेरे सामने है और मैं पुल सिरात पे खड़ा हूं, जन्नत मेरी दाई तरफ, जहन्नम मेरे बाई तरफ, मलकुल मौत मेरे पीछे है, और ये नमाज मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। कहते मैं इस तरह नहीं, ये नमाज मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज। फिर मैं क़याम करता हूं जिस तरह शरीयत मुताहरा का हुक्म है, फिर अल्लाह से डरते हुए रुकू आजी के साथ सजदा, ये सारे आज़ा को बजा लाता हूं, और उम्मीद भी है और खौफ है, इन दोनों कैफियत के साथ मैं नमाज को अदा करता हूं। फिर उसके बाद इरशाद फरमाने लगे कि मैं नहीं जानता मेरी नमाज कबूल हुई है कि नहीं, मैं नहीं जानता। उन्होंने पूछा आप कितने अरसे से ये नमाज पढ़ रहे हैं? फरमाने लगे 30 साल से मेरी नमाज ऐसे ही है, 30 साल से मैं ये नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाहु अकबर, 30 साल से इस अंदाज से नमाज पढ़ते रहना, और फिर डर की कैफियत ये है, खौफ की कैफियत ये है, कबूल हुई है या नहीं हुई, ये इन्हीं का हिस्सा था इबादत गुजारों का। हम तो एक आधा अमल करें तो हमें शैतान कहां से कहां उठाकर बैठा देता है, वो दिल ही दिल में हमें ऐसी वसवसे डाल देता है, बड़े इबादत गुजार बन गए, नेकोकार बन गए, बड़ी हमने बातें कर ली है, बहुत नेकियों वाले मामलात हमने कर लिए। ये जरूर हमें सोचना चाहिए। तो अल्लाह के हुजूर हाजिरी भी दें खुशो खुजू के साथ, रब काबा की हमें इबादत करनी चाहिए। तो पहली सिफत कामयाब मोमिनों की फरमाई, जो नमाजों में अल्लाह ताला के हुजूर ऐसे डरते हैं, खुशो खुजू के साथ नमाज को पढ़ते हैं और डरते हुए अल्लाह के हुजूर हाजिरी देते हैं। दूसरी बात इरशाद फरमाई, और वो जो फजूल बात से मुंह फेरने वाले हैं, वो जो किसी भी बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते, फजूल बातों की तरफ तवज्जो नहीं करते, उनको मुंह से निकालते नहीं है, यानी वो अपनी जबान की भी हिफाजत करने वाले हैं, ऐसे फजूल और लगवियात से बचने वाले हैं। इन कामयाब मोमिनों में अल्लाह ताला ने ऐसे मोमिनों की भी तारीफ फरमा दी है, उनको जिक्र फरमा दिया है कि वो जो बेहुदा बातों से, फजूल बातों से, इनसे बचने वाले, अपनी जबान की हिफाजत करने वाले गए, ये भी मोमिनों में से वो हैं जो कामयाब मोमिन है। पहला खुशू खुजू, दूसरा बेहुदा और फजूलियात से बचने वाला, फजूल बातों से बचने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से यह है कि वो ला यानी चीज छोड़ दे, यानी जो चीज कार आमद ना हो उसमें ना पड़े, जबान, दिल, दीगर आजाब, बेकार बातों की तरफ मुतवज्जे ना हो। हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी दी और अर्ज की नजात क्या है? आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जबान पर काबू रखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे, यानी बेकार इधर उधर ना जाओ, और अपनी खता पर आंसू बहाओ, अपनी खताओं पर आंसू बहाओ, और बेकार इधर उधर ना जाओ, अपने घर में जो है गुंजाइश रखो, यानी अपने घर में रहो, बेकार उधर उधर ना जाओ। मुख्तसर यह है कि आदमी लगव कामों से बचे, वो लगव और फजूलियात वो चाहे बाहर मजमे में हो, एक वो दौर था आज भी कि जिस वक्त बकसरत से ये मुजम्मत की जाती कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, बाहर की मजलिसें अच्छी नहीं है, बाहर की सोहबतें अच्छी नहीं है, घर में रहना चाहिए, घर में रहो और घर में रहकर अपने आप को उन बुरी सोहबतों से बचाओ, बुरे दोस्तों से बचाओ। लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं तो घर की तन्हाइयां भी कोई अच्छी नहीं है। जो घर में बैठे हुए हैं और बिलखुसूस घर की तन्हाइयों में है, पहले तो बुजुर्ग यही घर की तन्हाइयों को इख्तियार करते थे वाकई ही किस मकसद के लिए, कि इबादत के लिए यकसोई का जरिया है अपने घर में रहे। लेकिन आज अपना अलग अलग रूम बनाना, अपने अलग अलग रूम के अंदर मसरूफियात को बनाना, ये कोई अच्छे और मुफीद कामों के लिए कम और बुराई के मामलात के लिए ज्यादा। क्योंकि आज की सोहबतें वो सिर्फ लोगों के मजमों के साथ मुनहसिर नहीं है, इंटरनेट का दौर है, मोबाइल कंप्यूटर कंप्यूटर के जरिए, फेसबुक के जरिए तरह तरह के जो है वो जराए हैं। आदमी घर में तनहा बैठे हुए भी इतने लोगों के झुरमट में गोया कि एक जाल में, इंटरनेट जाल है, एक जाल में फंसा हुआ है। वो घर की तन्हाई में भी बैठकर किस सोहबत में पड़ा हुआ है? अल्लाह अकबर, फजूल बात। गुनाह की बात तो है ही गुनाह, हमें फजूल बातों से मना किया गया। फजूल बात, हर फजूल बात गुनाह नहीं है, फजूल बात को गुनाह के जुमरे में नहीं बयान किया जाता। हाँ, अच्छी आदमी की सिफात में से नहीं है कि वो फजूल बातें करता रहे, ला यानी कामों में पड़ा रहे, लेकिन ये ऐसे काम है जो हमें गुनाह के कामों में डाल देंगे। तो इसलिए इस काम से ही रोक दिया था कि गुनाह के काम की तरफ जाए ही नहीं, इससे ही बचो। लेकिन जबान की जो सही हिफाजत ना करे, वो बैठा हुआ है, वो अपने कमरे में जबान की हिफाजत कर रहा है, वो किसी के साथ जबान से नहीं बोल रहा, लेकिन उसके हाथ चल रहे हैं, उसका दिमाग चल रहा है, उसकी नजरें चल रही हैं, कौन सी बदनिगाही में पड़ा हुआ है, कौन से दिल के बुरे ख्यालात में पड़ा हुआ है, कौन सी इंटरनेट की मसरूफियत में पड़ा हुआ है। तो घर की तन्हाइयों की भी जो तन्हाइयां हैं हर एक के लिए, वो भी अच्छी नहीं है, मुफीद नहीं है। वालदैन को बहुत गौर करना चाहिए, माँ बाप को बिलखुसूस, अपने बच्चों को भी ऐसा तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। माजरत से, बहुत से घरों में है ऐसे निजाम कि ठीक है, अब बच्चा 12 साल 15 साल का हो गया, इसको अलग रूम चाहिए, उसका वो अलग रूम है, बच्ची का अलग है, बेटी का अलग है। ऐसा तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चों पे भी इस हवाले से भी नजर रखनी चाहिए कि बच्चे की घर की तन्हाई में भी उसकी इंटरनेट की मसरूफियत वो कैसी है, उसकी इंटरनेट की मसरूफियत कैसी और ये सोहबत उसकी कैसी है। अव्वल तो इन चीजों से वैसे ही गुरेज करना चाहिए, इन चीजों से दूर रखना चाहिए, लेकिन अगर कुछ इस्तेमाल है तो कैसा इस्तेमाल है। तो इससे यकसर माँ बाप को आंखें नहीं बंद करनी चाहिए, इस तरफ जरूर तवज्जो करनी चाहिए और ये देखना भी चाहिए। इंसान तरह तरह के गुनाहों में इस तन्हाई में रहकर भी जो है वो पड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से कसीर उसको जो है दुनियावी तौर पर भी नुकसान उठा रहा है, अपनी सलाहियतों को तबाह कर रहा है, अपने पढ़ाई को तबाह कर रहा है, अपनी तालीम को तबाह कर रहा है, और साथ साथ जहनी तौर पर भी कितनी तबाहियों की तरफ वो जा रहा है। वो नौजवान जिसके अभी नौजवानी के दिन जो है वो ये अपनी शख्सियत को, अपनी जात को कुछ बनाने के दिन है, लेकिन इसकी ऐसी मसरूफियात हो गई है कि ये अपने आप को ही तबाही की तरफ लेके जाने वाला है। आज बाज माँ बाप तो इससे गफलत करते हैं कि ठीक है, बच्चे हमें सता नहीं रहे, अपने कामों में मशगूल है, लेकिन शायद ये माँ बाप जानते नहीं है, कल को इनको पछताना पड़ेगा, ये रोएंगे। तो इसलिए ऐसी सोबतों से आज ही अपने बच्चों को जरूर बचाना चाहिए और बच्चों पे नजर रखनी चाहिए। आगे कामयाब मोमिन की तीसरी सिफत को अल्लाह ताला ने बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वल्लदीना हुम लिज़्ज़कती फाइलून, और वो जो ज़कात देने का काम करने वाले हैं, यानी अपनी ज़कात को अदा करने वाले हैं। कामयाबी पाने वाले अहले ईमान मोमिन का जो है वो तीसरा ये वस्फ बयान किया गया कि पाबंदी के साथ हमेशा अपने मालों पर फर्ज होने वाली ज़कात देते हैं। और ज़कात जो शरीयत मुताहरा ने उस पर लाजिम की है, जिस जिस माल में जिस जिस अंदाज से लाजिम की, जितनी जितनी की, वो उस माल की ज़कातों को अदा करने वाले हैं, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के हुक्म पर अपने माल की ज़कातों को अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने उन मोमिनों की तारीफ फरमाई है और उन मोमिनों को कामयाब मोमिन फरमाया है। ये मर्द भी ये औरतें भी, जिक्र यहाँ पे अगरचे मर्दों के सीगों के साथ है, लेकिन इन फजाइल के अंदर तमाम खवातीन, मोमिन खवातीन भी जो है वो शामिल होती हैं, जो इन सिफात के साथ और इन इन औसाफ को अपने अंदर अपनाती हैं, वो भी इन तमाम तर तारीफों की भी हकदार है और इन तमाम तर फजाइल वो भी उन्हें मिलेंगी। और ये तमाम तर कामयाबियां अल्लाह उन खवातीन को भी अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माल की जकात अदा कर दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो बेशक उसके माल का शर उसे चला गया। जिसने माल की जकात को अदा किया, उसके माल का शर उसे चला गया, यानी वो अपने माल को नुकसान से बचा लेता है। जकात का अदा हो जाना उस माल की जो है वो नुकसान से बचने की सूरत हो जाती है। हदीस में ये इरशाद फरमाया गया है कि चाहे कोई माल जो है वो आग किसी माल को जला दे या कोई माल जाया हो जाए, तो वो जकात ना अदा करने की वजह से जाया होता है। तो इसलिए आदमी को इन चीजों पर भी गौर करना चाहिए और अपने माल की पूरी पूरी जकात को अदा करना चाहिए। घर की खवातीन हो वो अमूमन ये कह के छोड़ देती हैं, हम तो कमाती नहीं है, हम कहाँ से दें जकात, जेवरात रखे हुए हैं, बच्चों की शादी के लिए हमने रखे हुए हैं, मुश्किल वक्त में काम आएंगे इसलिए जेवरात रखे हुए हैं। लेकिन अगर आपका जेवर जकात के निसाब के मुताबिक है, आपके पास इतनी रकम या इतना कैश या प्राइज बॉन्ड या जकात के अमवाल वो मौजूद है, तो फिर ये इस तरह के उजर काबिले कबूल नहीं है कि मुझे आगे जाकर काम आएंगे, हमने मकान बनाना है या हमने आगे जाकर अपने बच्चों की शादी करनी है। तो उसके लिए ये शरई तौर पर हमें रहनुमाई हासिल करनी चाहिए और अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करनी चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। माल की ज़कात जो मालिक है उसी पर लाजिम होती है। बीवी पर बीवी के माल की अपनी ज़कात लाजिम होती है। शोहर पर शोहर के माल की ज़कात लाजिम होती है। शोहर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बीवी के भी तमाम तर माल की ज़कातें खुद इकट्ठी करके वो ज़कात दे। हाँ, अगर वो देता है अपनी मर्जी से और बीवी की इजाजत से वो बीवी की ज़कात अदा करता है, अलग बात है, ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन ये उसकी इस बाकायदा कोई जिम्मेदारियों में से नहीं है। तो अगर बीवी के पास इतना जेवर है तो वो अपनी ज़कात, और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि शोहर भी नहीं देता और बीवी कहती मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो जेवर है। तो ऐसी खातून को, ऐसी इस्लामी बहन को भी अल्लाह से डरना चाहिए कि फर्ज को छोड़ने वाली आप शुमार होंगी, आपके शोहर नहीं होंगे। फर्ज को छोड़ने वाली वो बेटी शुमार होगी, उसका वालिद नहीं होगा, जिस बेटी की मिल्कियत में जेवर आ चुका है, जिस बेटी की मिल्कियत में वो रकम आ चुकी है, जिस बेटी की मिल्कियत खुद साहिब निसाब वाली हो चुकी है, तो अब किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, इसकी अपनी है। तो ये या तो अपनी ये कैफियत बना ले कि ये अपने ऊपर इसके ऊपर ज़कात ही लाजिम ना हो, यानी इसके पास माल इतना इतना हो, या फिर ये कि साल बसाल ये अपनी जिम्मेदारी के साथ इस फर्ज को अदा करती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़कात के तारिक बनते रहे और यही माल जिसे आज हम बड़ी मोहब्बतों से जमा करते हैं, क़यामत के दिन यही हमारे लिए अजाब बन जाए और इसी माल के जरिए आदमी को सजा दी जाएगी, इसी माल के जरिए आदमी को अजाब दिया जाए, उसके अजाब को दागा जाएगा इस माल के जरिए से, तो ये बहुत ही खतरनाक लम्हात होंगे और सख्त तकलीफ वाले लम्हात होंगे। तो इसलिए कोशिश करके अपनी ज़कात को पूरा पूरा अदा करना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने सूरह मोमिनून की इन 10 आयात मुबारका में से सिर्फ 3 का दर्स सुना। कामयाब कौन है, कामयाब मोमिन कौन है, उनकी कौन सी सिफात होनी चाहिए, इंशाल्लाह लज़ीज़ नेक्स्ट दर्स भी शान नज़ूल का इन्हीं कामयाब सिफात के ऊपर ही हमारा कुछ आगे बहुत अहम मामलात को बयान फरमाया है, उस पर इंशाल्लाह लज़ीज़ आइंदा शान नज़ूल में हम ये सुनेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो कामयाब मोमिनीन की सिफात को अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, अल्लाह ताला मुझे आपको उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखते रहिए मदनी चैनल, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।